हरे कृष्णा। आप सभी का इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में स्वागत है और आज हम भगवद गीता के 12वां अध्याय जिसका शीर्षक भक्ति योग है उसका अध्ययन करेंगे। हमने देखा 11वां अध्याय विराट रूप चैप्टर के अंत में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं या एक प्रकार से बताते हैं कि कैसे कृष्ण ही सभी जो स्वरूप हैं अलग अलग भगवान के रूप हैं विष्णु रूप सबके सूत्र हैं और लोग अपने अपने नज़रिए से भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं पर भगवान को समझने का तरीका सिर्फ एक है वो है भक्ति योग। इस प्रकार भगवान इम्पर्सनल फॉर्म विराट रूप या चतुर्भुज फॉर्म उस सब के सूत्र हैं अर्जुन को समझाते हैं। अब 12वें अध्याय में अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है जिससे ये 12वां अध्याय शुरू होता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है अर्जुन के द्वारा। काल के शुरुआत से योगियों के बीच में एक प्रश्न बना हुआ है निरंतर, सर्वश्रेष्ठ कौन, निरंकार भगवान या वो जिनका स्वरूप है? और उस प्रश्न का जवाब इस अध्याय में आज हमें मिलेगा जहाँ अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु विराट रूप भी आप ही का रूप है और कृष्ण रूप तो आपका ओरिजिनल रूप है और दो प्रकार के स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं जो एक निरंकार की पूजा करते हैं और एक आकार की पूजा करते हैं, मतलब आपकी पूजा, इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? इस प्रकार भगवद्गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, एवं सतता युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। कृपा करके बताएं प्रभु, जो व्यक्ति आपकी भक्ति द्वारा सेवा कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या जो निरंकार की सेवा कर रहा है? अगर देखा जाए तो भगवद्गीता ये साफ साफ स्थापित करती है कृष्ण परम पिता है, वही कृष्ण जिसने अर्जुन को ज्ञान दिया। ऐसे नहीं कि कोई निरंकार कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से साक्षात बात कर रहे हैं। कई बार समाज में देखा जाता है भगवद्गीता के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं पर कृष्ण का कहीं नाम नहीं होता। उदाहरण के रूप में 1975 में श्रील प्रभुपाद को भारत में, मेरे ध्यान में अगर सही है तो इंदौर में एक गीता सम्मेलन समारोह में आने के लिए इनविटेशन दिया गया। श्रील प्रभुपाद की इस प्रकार के कार्यक्रम में जाने की कोई इच्छा नहीं हुआ करती थी क्योंकि प्रभुपाद को पता था इन प्रोग्राम में क्या होगा, कृष्ण को स्वीकारते तो नहीं है पर भगवद्गीता के मैसेज पर लोग अपना नोट छापते हैं। प्रभुपाद से बड़ी विनती करी गई तो प्रभुपाद अपने शिष्य गुरुदास के संग वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रभुपाद का आदर सत्कार करा जाता है, उनको स्टेज पर बुलाया जाता है और प्रभुपाद जैसे स्टेज पर पहुँचते हैं तो हैरान हो जाते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है गीता सम्मेलन, ना ही तो कृष्ण है ना ही अर्जुन है और स्टेज पर एक लैंप लगा रखा है। तो शिला प्रभुपाद जिसने इसका आयोजन किया था उससे पूछते हैं, अरे गीता सम्मेलन है, कृष्ण अर्जुन का एक चित्र भी नहीं है? तो जिसने ये प्रयोजन किया था बोलते हैं, स्वामी जी कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं और वो कृष्ण इस समय इस लैंप में भी समान है, इस प्रकार हमने कृष्ण का चित्र नहीं लगाया। मतलब क्या है? निरंकार। श्रील प्रभुपाद को बहुत बुरा लगता है, प्रभुपाद वहाँ से चले जाते हैं। प्रभुपाद को जो प्रवचन देने का मौका था वो सबसे अंत में था, तो जब प्रभुपाद का मौका आता है, जब वहाँ के जो प्रयोजक या प्रबंधन है उनके पास जाते हैं तो श्रील प्रभुपाद प्रवचन देने से मना कर देते हैं और कहते हैं, मेरा शिष्य गुरुदास वो आप सबको प्रवचन देगा। गुरुदास प्रभु स्टेज पर चढ़ते हैं, सब उस मायावादी निरंकारवादियों की प्रशंसा करते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे ये तो हमारी पार्टी का है। निरंकार का गुणगान करते हैं तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, जैसे रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, जैसे ही व्यक्ति उस रसगुल्ले को खाता है। निरंकार की परिभाषा क्या है? सब कुछ एक समान है, सब एक दृष्टि से देखो। जीव और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मन और पराब्रह्मन एक समान है। तो गुरुदास जी कहते हैं जैसे रसगुल्ले या गुलाब जामुन को खाकर जीभ में पानी आ जाता है, उसको खाते हैं तो उस बड़ा स्वाद आता है, उसको खाने के बाद अगले दिन सुबह स्टूल के रूप में उसको बाहर निकालता है व्यक्ति। तो जिस प्रकार एक निरंकार को हर चीज़ एक समान नज़र आती है, तो उसको रसगुल्ले और स्टूल के अंदर भी अंतर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार रसगुल्ले को खाते समय उसके मुंह में पानी आता है, उसी प्रकार सड़क पर पड़े हुए स्टूल को देखकर भी उसके मुंह में पानी आना चाहिए। सारे के सारे संत बैठे हुए कांपने लगे, क्रोधित हो गए, वहीं से उठकर गए प्रभुपाद के रूम में, बोले स्वामी जी ये कैसा शिष्य है आपका, हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं क्या हुआ, क्या कहा मेरे शिष्य ने? तो पूरी कहानी सुनाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं माफ़ कीजिए, विदेश से आया है, बड़े ग्राफिक होते हैं ये लोग, उस उदाहरण के लिए माफ़ करिएगा, आप चले जाइए। तो लोग शांत हो जाते हैं, वहाँ से वापस जाते हैं। और उसके बाद शिल प्रभुपाद अपने शिष्य गुरुदास प्रभु की तरफ देखते हैं, गुरुदास प्रभु को बोलते हैं क्या उदाहरण दिया तुमने, क्या मैं तुम्हारा उदाहरण इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने प्रवचन में? इस प्रकार प्रभुपाद वहाँ बात करते हैं। मतलब क्या है? मतलब तो साफ है, लोग भगवद गीता का उपयोग करते हैं पर कृष्ण को नकार देते हैं। इस प्रकार यहाँ के पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं प्रभु कौन महान है, कौन सर्वश्रेष्ठ है जो आपको अपनाता है या आपको निरंकार करके आपको नकार देता है? तो भगवान इसका उत्तर तुरंत दूसरे श्लोक में देते हैं, कहते हैं श्री भगवान उवाचा मयि आवेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन, भक्ति भक्ति और भक्ति, भक्ति जितना सरल और साधारण और तुरंत फल देने वाला या रिजल्ट देने वाला मार्ग कोई और नहीं है। भक्ति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक सफलता बड़ी आसानी से मिलती है, मार्ग बड़ा सरल है, और दूसरा जॉयफुल प्रोसेस है। व्यक्ति भक्ति को पालन करते हुए बड़ा खुश रहता है और जब उसका फल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसको बड़ा आनंद होता है, क्यों, अब उसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो गया है। भक्ति क्यों इतनी सरल बताई गई है? क्यों? क्योंकि भगवान का नाम या भगवान की सेवा करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है। दो छोटे से उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति शिप से ट्रैवल कर रहा था यूरोप में, एक देश से दूसरे देश की तरफ। जिस रूम में वो चेक इन करता है उस रूम में उसको एक छोटा सा प्लांट दिखता है। जिस व्यक्ति ने पहले उस कमरे में रुका था वो गलती से उस प्लांट को वहाँ भूल जाता है। तो ये जो नया व्यक्ति आता है इसको पेड़ पौधों से लगाव होता है और उस पौधे का वो ध्यान रखता है जितने दिन भी शिप में रहता है, और जैसे ही अपनी कंट्री में पहुँचता है अपने साथ साथ उस पौधे को ले जाके अपने घर पर ले जाता है। अगले 3 से 4 महीने तक डेली उसको पानी डाले, बड़े ध्यान रखे, पर अगले 3-4 महीने के अंदर ही उसके मन में बड़ा बदलाव आ जाता है। अपने आप ही वो मांसाहार करना छोड़ देता है, नशा करना छोड़ देता है। और एक दिन वो सोहो स्ट्रीट लंदन पे, वह वहीं पे हाई स्ट्रीट पे चल रहा था और हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त वहीं सड़क पर हरिनाम कीर्तन करते हुए जा रहे थे। भक्तों का इस व्यक्ति से मिलना होता है, भक्त उससे कहते हैं भगवद्गीता कृपा करके लीजिए पढ़िए। व्यक्ति भगवद्गीता लेता है, घर जाके पढ़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। और भगवद्गीता के अंत में सोहो स्ट्रीट टेम्पल का एड्रेस होता है, वो मंदिर में जाता है, हर हफ्ते जाकर मंदिर में भक्तों से जुड़ने लगता है और कुछ ही समय में नाम जप शुरू कर देता है। भक्ति में बड़ा आनंद आने लगता है, भक्तों के संग में आनंद आने लगता है और कुछ ही समय के अंदर पूर्ण रूप से भक्ति के नियमों का पालन करने लगता है। एक दिन एक भक्त ने उससे पूछा आपके जीवन में इस प्रकार बदलाव कैसे आया? बोला प्रभु मुझे पता नहीं कैसे बदलाव आया, पर मेरे मन में एक शंका है बदलाव आने का कारण। मैं कई बार सुबह मंदिर में आया हूँ, जब मैं मंदिर सुबह आता हूँ तो मैं यहाँ पे तुलसी पूजा को देखता हूँ। जब भी मैंने तुलसी पूजा को देखा है, ये जो तुलसी का वृक्ष है या पौधा है, इसका देख के ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मेरे घर पे भी इसी प्रकार का एक पौधा पड़ा है और अनजाने से मैं कई महीनों से इसकी सेवा करते आया हूँ। तो भक्त बड़ा उत्साहित होता है, बोलो चलो मुझे लेके चलो अपने घर पर। जैसे ही वो घर पर लेके जाता है तो जो पौधा उसको शिप में मिला था और जिस पौधे की वो सेवा कर रहा था उस तुलसी का पौधा निकलता है। सिर्फ तुलसी महारानी की सेवा करने से, अनजाने में सेवा करने से, सोचिए व्यक्ति ने सारे पाप कर्म छोड़ दिए और इतनी सरलता से भक्तों का संग ले लिया और भक्ति के नियमों का पालन करने लगा। एक बार ये एम्स्टर्डम की कहानी है, जहाँ पे उस समय रात का समय था, हमारे भक्त कुछ फुटबॉल गेम के बाद संकीर्तन करते हुए वापस मंदिर में जा रहे थे। उसी सोसाइटी में एक घर था जहाँ पे पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी ही कृष्णमूर्ति नाम के एक महान, एक प्रकार से योगी कहिए, स्पिरिचुअलिस्ट कहिए, उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तो उन दोनों के घर पे एक कुत्ता था जो पत्नी को बहुत प्रिय था, और कृष्णमूर्ति की बहुत बड़ी फैन थी, तो उसने अपने कुत्ते का नाम रखा था कृष्णा। और इस रात को वो कृष्णा, मेरा मतलब उनका कुत्ता, गायब हो गया। और वो अपने पति को बोलती है, अगर जब तक आप मेरे कुत्ते को ढूंढ के नहीं लाओगे, मैं आपको घर में नहीं घुसने दूंगी। और बेचारा पति ऑफिस से थका हारा काम करके आया, अब वो सड़क पर भटक रहा है, कृष्णा कृष्णा पुकारते हुए। रात को अंधेरा हो चुका है और यहाँ हमारे भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं। वो बड़े परेशान होते हैं, हम इतने सारे लोग हैं, हमारी आवाज़ एक साथ मिलकर भी इतनी ज़ोर से कृष्ण की आवाज़ नहीं हो रही, यहाँ पे एक व्यक्ति, एक विदेशी कृष्णा कृष्णा करते हुए भटक रहा है। तो एक भक्त उससे जाके मिलता है, बोलते हैं, प्रभु आप ये कृष्ण कृष्ण क्यों बोल रहे हो? बोले, मेरे ये पेट डॉग का नाम है, वो खो गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो भक्त बोलता है, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। उसका हाथ पकड़ के उसको मंदिर ले आते हैं, और इस प्रकार इस व्यक्ति का भक्तों से मिलना होता है। और आज वह व्यक्ति इस्कॉन में एक महान सेवा कर रहे हैं, और आज उन्होंने संन्यास आश्रम धारण कर पूरे विश्वभर में वो ट्रैवल करके लोगों को भक्ति का प्रचार करते हैं। हाँ या ना, भक्ति से सरल कोई हो सकता है? तो आगे भगवान तीसरे श्लोक से लेकर पांचवें श्लोक तक कहते हैं, हे अर्जुन, जो इम्पर्सनलिस्ट का मार्ग होता है बड़ा दुखदायक होता है, बड़ा कठिन होता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, इंद्रियों पर संयम करना पड़ता है, क्या क्या तप नहीं करना पड़ता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सरल मार्ग नहीं है। दूसरा, बहुत लंबे लंबे समय के प्रयत्न के बाद कहीं सफलता मिलने की चांसेस होती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चौथे और पांचवें श्लोक में इम्पर्सनलिस्ट का जो मार्ग होता है उसका उल्लेख करते हैं, और छठे और सातवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का उल्लेख करते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो भक्ति योग का मार्ग है उसमें व्यक्ति अपने मन को बड़ी सरलता से केंद्रित कर सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में भगवान का विग्रह होता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है तो विग्रह तो होगा ही। और जो निरंकारी होते हैं वो भगवान के स्वरूप में तो विश्वास करते नहीं, तो ना कोई डीटी वर्शिप होती है, ना कुछ होता है। तो क्योंकि भक्त विग्रह की पूजा करते हैं तो उनका मन बड़ी सरलता से लगता है। दूसरी चीज़ भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति मार्ग में इंद्रियों को बड़ी सरलता से एंगेज किया जा सकता है, अच्छा प्रसादम ग्रहण करने को मिलता है, अच्छा भजन सुनने को मिलता है, साथ ही साथ नृत्य करने को मिलता है। और ये जो ज्ञानियों का मार्ग होता है, निरंकारों का मार्ग होता है, पर्सनलिज्म का पाथ होता है, उसमें इंद्रियों को एंगेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें सिखाया जाता है इंद्रियों को एंगेज मत करो, तो बहुत बहुत तपस्या होती है। तीसरा पॉइंट भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस भक्ति योग का पालन करने के लिए किसी की कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी किसी भी समय भक्ति से जुड़ सकता है। बट ज्ञान योग का पालन, इस प्रकार इम्पर्सनलिस्ट का पालन, मार्ग का पालन करने के लिए व्यक्ति को शास्त्र में बहुत निपुण होना पड़ता है, उसको शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद वो कहीं जाकर इस जीवन का पालन करना कर सकता है। और अंत में चौथा पॉइंट भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो भक्ति योग का पालन करता है उसको निश्चित रूप से मेरी सुरक्षा मिलती है, पर जो इम्पर्सनलिज्म या निरंकार या जो ज्ञानी का मार्ग है, क्योंकि वो भगवान के रूप में तो विश्वास करता ही नहीं, एक प्रकार से भगवान में ही विश्वास नहीं करता, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और यहाँ पे भक्त जब भी कभी कठिनाई में आए, जैसे द्रौपदी, पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कोई उसकी संरक्षण नहीं कर पाए, यहाँ पे द्रौपदी ने हाथ उठाए, गोविंद मुकुंद माधव नाम पुकार के कृष्ण का आह्वान किया, और कृष्ण हस्तिनापुर में आए और द्रौपदी का संरक्षण करा। इस प्रकार भगवान कहते हैं, अर्जुन, हर समय हर स्थिति में भक्ति योग से सरल कोई तरीका नहीं है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, अच्छा प्रभु अगर ऐसा है तो भक्ति योग का पालन कैसे कर सकते हैं। और फिर अब भगवान भक्ति योग के बारे में श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 12 तक अलग अलग प्रकार के स्टेप्स बताते हैं। यहाँ भगवान की मैग्नानिमिटी और कंपैशन देखने को मिलती है। भगवान नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग से हट जाए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति नहीं कर सकता तो दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा तरीका, अनेक अनेक मार्ग बताते हैं ताकि व्यक्ति भक्ति से जुड़ सके। उदाहरण के रूप में, कभी आपने सोचा है भगवान क्यों अनेक अनेक अवतार लेकर आते हैं? सोचने वाली बात है। कभी आपने सोचा है भगवान क्यों अलग अलग योग क्रियाओं के बारे में उल्लेख करते हैं? क्यों भगवान ने अलग अलग योग क्रियाएं बताई हैं, अलग अलग अवतार लेकर आते हैं? उसका कारण एक सिंपल सा है, हर व्यक्ति अलग अलग कारणों से इंस्पायर होता है। जैसे कई लोग राम के भक्त होते हैं और दूसरे नरसिम्हा के, तीसरे वामना वरा अवतार और कुछ कृष्ण के। तो अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रेरणा से इंस्पायर होते हैं। इसलिए भगवान किसी को नहीं नकारना चाहते, निराश नहीं करना चाहते, बार बार धरती पर अवतरित होते हैं अलग अलग स्वरूप में ताकि लोग भक्ति के मार्ग से जुड़ पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक इसी बारे में चर्चा करते हैं। और 8वें श्लोक में सबसे पहले भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ तो वो है जहाँ व्यक्ति पूर्ण रूप से मन को मेरे में लीन कर ले, हर समय 24 घंटे मेरी सेवा में लगा रहे। उसको कहा जाता है स्टेट ऑफ अब्सॉर्प्शन। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भगवान के नाम जप में इतने लीन रहा करते थे कि श्री राधा एंड कृष्णा उनकी सेवा या संरक्षण के लिए आते थे। एक बार राधा कुंड में बैठे हुए रघुनाथ दास गोस्वामी दिल्ली वृंदावन की गर्मी में नाम जप कर रहे हैं, गर्मियों के मौसम में कड़े की धूप हो रही है, श्रीमती राधा रानी अपने पल्लू से रघुनाथ दास गोस्वामी का सर ढक लेती हैं। अगली बार रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसी राधा कुंड पर बैठे हुए नाम जप कर रहे हैं, सामने से शेर आ जाता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाते हैं छड़ी को लेकर शेर को भगाने के लिए। और ये सब सनातन गोस्वामी देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण बताते हैं, अर्जुन अगर कोई व्यक्ति फुल अब्सॉर्प्शन से मेरी भक्ति कर पाए तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन बोलते हैं, प्रभु अभी मन तो आपके अंदर केंद्रित ना हो सके तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान फिर 9वां श्लोक बोलते हैं, कहते हैं, अर्जुन साधना भक्ति का पालन करो, रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस। ये रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस क्या है? जहाँ पे व्यक्ति साधना या साधन के नियम जो गुरु के द्वारा स्थापित किए गए हैं उसका पालन करते हुए अपने मन इंद्रिया चेतना को शुद्ध करता है, और समय के साथ जब वो शुद्ध हो जाती हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती है। जब तक मन पर भौतिक इच्छाओं का मेल चढ़ा हुआ है तब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें 4 नियम, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और सेक्स, एंड शास्त्र का अध्ययन, भगवान की सेवा और नाम जप, 16 माला नाम जप डेली करनी चाहिए। इसको कहा जाता है साधना का मार्ग। यहाँ पे हम गुरु के कहने पे ये करते हैं, जब आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति 16 माला नाम जप नहीं करता, तब तो कोई सीमा नहीं होती। तो अर्जुन बोलते हैं, प्रभु अगर किसी की इतनी भी करने की क्षमता ना हो या इच्छा ना हो तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे लिए कर्म करो, जो भी आप काम करो उसका फल मेरी सेवा में लगाओ, मेरे मंदिर बनाने में लगाओ, मेरे लिए दान दो, मेरे नाम पे लोगों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो अर्जुन बोलते हैं, प्रभु अगर ये भी ना कर पाए कोई व्यक्ति, किसी फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के कारण हो सकता है ऐसी स्थिति बने जब घर वाले या समाज के लोग उसको भगवान की सेवा में चंदा या दान देने से मना कर दें, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। 11वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, कम से कम समाज की सेवा के लिए तो दान करिए। तो अर्जुन सोचते हैं, प्रभु दान पे आप क्यों इतना प्रबल कर रहे हो, चैरिटी का क्या फ़ायदा? तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन दान देने से मन शुद्ध होता है। हमारे मन में सबसे बड़ी आसक्ति हमारे कर्म फल से है, और सबसे बड़ा कर्म फल होता है लक्ष्मी या पैसा। अगर उस पैसे को आप भगवान की सेवा या समाज के कल्याण में लगाओगे तो आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, 12वें श्लोक में कहते हैं कम से कम नॉलेज कल्टीवेट करिए, मतलब इस्कॉन के किसी भी आपके शहर में कोई इस्कॉन का सेंटर हो तो वहाँ उनसे जुड़िए, हफ्ते में कम से कम एक तो भगवद्गीता का प्रोग्राम अटेंड करके दिव्य ज्ञान कल्टीवेट करिए। इस प्रकार व्यक्ति अगर अपने जीवन को व्यतीत करता है तो निश्चित ही रूप से वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। कृपा करके इनमें से किसी मार्ग का तो पालन जरूर करिए। तो अर्जुन उस समय सोचते हैं, प्रभु उन लोगों का क्या जो भक्ति के नियमों का या भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, उन में किस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण 13वां श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक उन भक्तों का उल्लेख करते हैं जो भक्ति योग के नियमों का पालन कर रहे हैं और उनकी क्वालिटीज़ कैसी होती हैं। मतलब क्या है, जब व्यक्ति भक्ति योग का पालन करना शुरू करता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी चेतना में बड़ा परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में, उसके एटीट्यूड में बड़ा परिवर्तन आता है। और यहाँ पर भगवान 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक कुछ ऐसी प्रमुख क्वालिटीज़ का वर्णन करते हैं जो स्वाभाविक रूप से भक्ति के द्वारा अपने आप जागृत हो जाती हैं और कुछ को हमें प्रयत्न करके जागृत करना पड़ता है। अंत में अर्थ तो यही है कि अगर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की क्वालिटीज़ आएँ तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बारे में हम सारांश में वर्णन करेंगे। और सबसे पहले श्रीमद्भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ते भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सूरः हरा भक्तस्य कुटो महद्गुणा मनोरथे नास्ति दावतो भई। सारांश में अर्थ इसका ये है, जो भगवान की भक्ति में लगा है उसमें अपने आप ही सब देवताओं के गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में ना लगा हो, चाहे कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे कितना रईस क्यों ना हो, पर उसका सब कर्म धरा का धरा रह जाता है। क्यों? मनोरथे नास्ति धावतो भई। वो मन के रथ पर बैठा हुआ इधर से उधर भटकता रहता है। मतलब जो छठे अध्याय में हमने बात करी थी, जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, माइंड बिकम्स हिज ग्रेटेस्ट फ्रेंड। और जो मन के द्वारा नियंत्रण में रहा तो मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसी प्रकार इस आखिरी कुछ श्लोकों में भगवान बताते हैं कैसे भक्ति के माध्यम से भक्त के अंदर सारे गुण उपस्थित होते हैं। तो इन जो ये कुछ श्लोक हैं, हमने इनको चार भागों में बांटा है, उस प्रकार उसका वर्णन करेंगे। और आप लोग भगवद्गीता को पढ़कर इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। पहली चीज़ जिसका उल्लेख किया गया है, यहाँ पर हम चार भागों में जैसे हमने बताया, सबसे पहला भक्त का अपने प्रति किस प्रकार का व्यवहार होता है। दूसरा जो हम चर्चा करेंगे, भक्त का दूसरे भक्त या व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार। और तीसरा, भक्त का समाज के प्रति किस प्रकार का व्यवहार या दृष्टिकोण होता है। और चौथा, भक्त का भगवान के प्रति क्या व्यवहार या दृष्टिकोण होता है। उसका उल्लेख इन श्लोकों में किया गया है, जैसे कि 13th और 14th श्लोक में भी यही बात दोहराई गई है। तो अपने प्रति, एक भक्त का अपने प्रति क्या व्यवहार होता है, वो फॉल्स ईगो से मुक्त होता है, उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं आती, उसके अंदर प्रोप्राइटरशिप जैसी गलत फहमी नहीं होती, वो अपने आप को ना ही तो प्रोप्राइटर या कंट्रोलर या एंजॉयर मानता है। इस प्रकार जो भक्त होता है वो इन प्रकार की गलत फहमियों से दूर रहता है। जब दूसरों की बात आती है, भक्त कैसे दूसरों के संग व्यवहार करता है, तो सबसे पहले भक्त दूसरों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता। वो सबके समान, सबके सामने और सबके प्रति मित्र के समान होता है। मतलब क्या है, वो दूसरों से कोई ऐसे कटु और कोई ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे उनका मन दुखे। वो सबसे इस प्रकार रिश्ता बनाए रखता है जैसे सब खुश रहें। और तीसरा, लोगों से कोई उपेक्षा नहीं रखता। साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार के बुरे संग को अपने साथ नहीं रखता। ही गिव्स अप ऑन ऑल काइंड ऑफ बैड एसोसिएशन। और चौथी चीज़ जो बताई गई है, दूसरों के संग कैसे व्यवहार करता है, भक्त कभी भी प्रजल्पा नहीं करता। यहाँ पे बताया गया है ग्रेविटी, भक्त ग्रेव होता है, मतलब जब भी दूसरों के संग चर्चा करे तो भगवान के विषय में चर्चा करता है ताकि उनका चेतना भी शुद्ध हो सके। तो अब तीसरा विषय आता है कि भक्त का समाज के प्रति क्या व्यवहार होता है। के दुखे लाभ लाभो जया जयो जो श्लोक आता है, जिसका अर्थ है भक्त संसार में होने वाली घटनाओं से विचलित नहीं होता और जो भी उसके जीवन में होता है वो उसको भगवान की कृपा के समान मानते हुए चलता है। वो भगवान के द्वारा जो भी मन उसके जीवन में स्थिति आती है उसको भगवान के द्वारा पैदा हुई स्थिति मानता है, वह स्थिति में शांत रहता है और जो भी कर्म करता है उसमें एक्सपर्ट होता है। इस प्रकार ना ही तो किसी में दोष निकालता है, ना ही किसी भी परिस्थिति में विचलित होता है, ना ही दुनिया में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है उन विषयों में मन लगाकर अपना समय व्यर्थ करता है। और चौथा और आखिरी, भगवान के प्रति क्या संबंध होता है, क्या व्यवहार होता है। किसी भी स्थिति में कुछ भी क्यों ना हो जाए, भगवान के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं होती। भक्ति योग के नियमों पे हमेशा दृढ़ता के संग लगा रहता है, श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के रूप में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने ही वाला था, जापान फाइटर प्लेन से बॉम्ब फेंक रहे थे कलकत्ता सिटी में, तो अभय बाबू हमारे शिला प्रभुपाद गृहस्थी जीवन में थे उस समय, और आस पड़ोस में बम गिर रहे थे तो सब जगह सायरन बज रहा था, उनका पड़ोसी वहाँ से भागता हुआ जा रहा था बॉम्ब शेल्टर की तरफ, और अभय चरण के घर में देखते हैं तो अभय चरण बड़े प्रेम से किचन में खड़े हुए कचौड़ियाँ फ्राई कर रहे हैं, तो उनका दोस्त बोलता है अभय चरण भागो भागो बम गिर रहे हैं, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। तो अभय चरण जी कहते हैं अगर कृष्ण किसी को मारना चाहे तो कौन बचा सकता है, अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहे तो उसको कौन मार सकता है। और प्रभुपाद या अभय चरण दे पूड़ियों को या कचौड़ी को फ्राई करते रहे, स्वाभाविक रूप से भगवान को अर्पण करके उस प्रसादों को ग्रहण भी करा होगा। सारांश क्या है, बहुत किसी भी अवस्था या परिस्थिति में निराश नहीं होता और भगवान के संग अपना संबंध बनाए लगता है। इसी के साथ भक्ति योग यह 12वां अध्याय समाप्त होता है। हमने शुरू के 6 चैप्टरों में पढ़ा किस प्रकार व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से भगवान के संग संबंध जोड़ सकता है, और अब कल से शुरू होने वाले 13th चैप्टर से लेकर 18th चैप्टर तक उल्लेख आता है कैसे ज्ञान के माध्यम से भक्त भगवान के संग संबंध जोड़ सकता है या भक्ति का पालन कर सकता है, और भक्ति क्या है उसका उल्लेख भगवान स्वयं 7th चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक करते हैं, जिसका उल्लेख और जिसका समापन आज 12वें चैप्टर का हमने आज किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस भगवद्गीता के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। हरे कृष्ण।